देवियों सज्जनों, स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित आर्योद्देश्य रत्नमाला के सीरीज में पिछली बार हम सुन रहे थे संस्कारों के बारे में। संस्कारों के बारे में लिखते हुए स्वामी जी आखिर में एक लाइन लिखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। लिखते हैं, इट इज एवरीबॉडीज ड्यूटी टू परफॉर्म ऑल दी संस्काराज, 16 संस्काराज, बट नथिंग शुड बी डन फॉर द डेट आफ्टर क्रिमेशन। इट रेफर्स द सेरेमोनियल डन फॉर द वेलबींग ऑफ द डेड सोल्स मीन्स आफ्टर देयर डेथ। मरने के बाद आप जो कुछ भी करते हैं उस व्यक्ति के लिए, हमारे जिसको आप पितर बोलते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी एंसेस्टर्स हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो अनर्थक हैं, यूजलेस हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, सिवाय आप एक इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, आप कुछ लोगों के जॉब सिक्योर करते हैं, दैट्स इट। क्यों नहीं, इसको समझना बड़ी जरूरी है। और क्यों लोग करते हैं, पहले इसको समझ लें। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे कल्चर में व रिलीजन में है कि मरने के बाद लोग श्राद्ध, तर्पण, गया, गंगा, हरिद्वार में जाकर के नदी के किनारे बहुत कुछ आडंबर करना और घर में भी श्राद्ध तर्पण करते रहना हर साल वगैरह वगैरह। ये दुनिया में हर कोने में है, जो अच्छाइयां या बुराइयां हैं ये ह्यूमन नेचर होता है, आपको हर जगह मिलेगा, हर रिलीजन में मिलेगा। कोई ट्राइबल रिलीजन हो या कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी टाइप का रन करता हुआ रिलीजन हो, सब जगह जो ह्यूमन नेचर है वो रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग रूप में। आप इजिप्ट के पुरानी कल्चर में भी देखते हैं, जो मॉमीज बने हुए होते हैं, पिरामिड्स बने हुए होते हैं, ऐसा लगता है मानो इट वॉज ए कल्चर ऑफ डेड पर्संस। वहां और कुछ होता ही नहीं था सिवाय पिरामिड बनने और मॉमीज बनाने का। होता क्या था, मरने के बाद आदमी की सुख सुविधा के सारे चीजें उसके साथ दफन किया जाता था, उसके खाने पीने की चीजें, उसके बिस्तर, उसके कपड़े, उसके ज्वेलरीज, और सिर्फ इतना नहीं देवियों सज्जनों, उसकी जिंदा बीवी को भी, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी। और राजा हो गलती से जिसके 10-50 बीवियां हैं तो उन सबको दफनाया जाता था, क्योंकि मरे हुए आदमी को जरूरत पड़े। ऐसा नहीं कि वो कोई इजिप्ट में होता था, सारे दुनिया में अलग अलग तरीके से होता था। लोग एजुकेटेड होते गए, इन चीजों को छोड़ते गए। हमारे यहां एजुकेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम है कि हम एजुकेटेड होने पर भी बहुत कुछ चीजें कल्चर के नाम पर पकड़ के बैठते हैं, रिलीजन के नाम पर पकड़ के बैठते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी है, इनके जो सेंट्स होते हैं जो मर जाते हैं, फिर उन सेंट्स को गॉड की तरह पूजने लग जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति को पूजना हर कल्चर में किसी ना किसी रूप में होता है। हमारे यहां भी श्राद्ध, पिंड, वो तर्पण के नाम पर है कि मरने वाले आत्मा को शांति मिलेगा। ध्यान रखिए, जो पढ़े लिखे लोग यूज करते हैं, मरने वाले आत्मा को शांति मिलेगी, मे द सोल गेट द इटर्नल पीस, ये बड़ी अजीब बात है। शांति तो सिर्फ जिंदा आदमी को मिलती है या मिलने की कोशिश करती है, मरे हुए आदमी तो ऑलरेडी शांति में ही है, आप क्या शांति करो। हमारे ट्रेडिशन में जो शब्द यूज होता है डिपार्टेड सोल के लिए, ईश्वर उसको सदगति दे, गिव ही मर हर ए गुड स्टेट ऑफ लाइफ, लेकिन शांति देना तो थोड़ा अगेन इट्स ए इम्पोर्टेड कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, वेस्टर्न तो नहीं कहेंगे, अब्राहिमिक रिलीजियंस का है। ये क्यों सब है इसको समझने के लिए आप आपकी जो रिलीजियस कंसेप्ट है वो आप समझते हैं तो थोड़ा उसको हम रिवाइज करते हैं। सो लाइफ इज वन कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस अंटिल वन गेट्स लिबरेशन। हम जानते हैं कि मरना इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, पैदा होना इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। ये तो एक स्टेज है और ये साइकिल है, चलता रहता है। मरने का सिंपल मतलब है द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, सोल एंड बॉडी। जिसको आप बर्थ कहते हैं या बर्थ की प्रोसेस शुरू होता है, तो इसका मतलब होता है इट्स ए यूनियन ऑफ मैटेरियल बॉडी एंड द सोल। जब हम मरते हैं तो हमारी पूरी इंडिविजुअलिटी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ जो फिजिकल बॉडी है वो नष्ट हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, ये आप बार बार जानते हैं, सुनते हैं, पर कंटेक्स्ट में बताने के लिए दो तीन मिनट सिर्फ आपको रिमाइंड कराता हूं। आत्मा अजर अमर है, शरीर छूटने के बाद आत्मा के साथ उसका मन, उसकी बुद्धि, और उस मन के अंदर स्टोर हुआ वो सारे हमारी एक्टिविटीज के जो 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 संस्कार है, संस्कार का मतलब जैसे आप अपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डालते हैं, आपके फ्लैश ड्राइव होता है जिसमें आप अपने सारे प्रोग्राम को सेव रखते हैं। कंप्यूटर समझ लीजिए, हार्डवेयर जो है वो आपकी बॉडी है, पर अगर उसमें प्रोग्रामिंग नहीं हो तो वो यूजलेस है, डेड बॉडी है। और प्रोग्रामिंग इनविजिबल होता है, आप इसको कोई हार्डवेयर की तरह देख नहीं सकते हैं, पर जब आप उसमें इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर लाइवन होता है, जीवित हो जाता है। जैसे प्रोग्रामिंग को आप सेव करते हैं आपकी फ्लैश ड्राइव में या ड्राइव में या किसी भी सीडी में या चिप में, जैसे आपके सेलफोन में, आपका मन की वही रोल है आपके पूरे लाइफ में। वो सारे हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे किए हुए कर्मों के रिजल्ट्स को, उस सबको उसमें स्टोर किया होता है। मरने का मतलब जब शरीर रह जाता है साथ में आत्मा के साथ, वो मन उन सभी किए हुए कर्मों के एक्सपीरियंस को साथ लेकर जाता है, नए शरीर में प्रवेश करता है। जो कुछ चेंज होता है वो क्या है? ऑल चेंज इज जस्ट ओनली द चेंज ऑफ एनवायरमेंट एंड एम्बॉडीड। फरक क्या आया एक व्यक्ति के लाइफ में कि उसकी जो शरीर है वो बदल गया। नेचुरली जब शरीर बदला तो एनवायरमेंट भी बदला। कल तक मैं यहां पैदा हुआ था, एक खास जगह पर, खास लोग मेरे पेरेंट्स थे, एक स्पेसिफिक लोग मेरे सर्कल में थे, मैं एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में था, एक खास जगह पर था, वो सब बदल गया। अब मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं इंसान ना हो, शेर हो, सांप हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, पानी में पलने वाले मछलियां हो, हो सकता है मेरा जगह अब ह्यूस्टन में ना हो करके अफ्रीका में हो, महासागर के गहराई में हो, जंगल के अंदर हो, पेड़ के पत्तों में हो, जगह बदल जाते हैं। ओवरऑल इकोलॉजी मेरे लिए बदल जाता है, पर मैं वही आत्मा हूं और मेरी पूरी कंटिन्यूटी बनी रहती है पिछले लाइफ से अगले लाइफ तक। ऑल इट इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स हमारे कल्चर के जो बेसिक दो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स है, एक द लॉ ऑफ कर्म एंड द लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। बहुत बार हम सुने हैं कर्म सिद्धांत कैसे फल देता है, और उसी कर्म सिद्धांत का जो सप्लीमेंटरी थ्योरी है, डॉक्ट्रिन है, वो है पुनर्जन्म सिद्धांत। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को हटा दो तो दूसरे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। अगर आप कहोगे कि मैं कर्म सिद्धांत नहीं मानता हूं, आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ कर्म, तो फिर आपके लिए पुनर्जन्म का कोई मतलब नहीं बचेगा। अगर आप कहोगे कि मैं लॉ ऑफ कर्म मानता हूं पर मैं ये पुनर्जन्म नहीं मानता हूं, तो फिर आपका वो थ्योरी भी बेकार हो जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन को नहीं मानते हो, फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे लाइफ में जो कुछ होता है उसको, कैसे आप जस्टिफाई करोगे? ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। सो डेथ इज जस्ट ए नेसेसरी एंड पासिंग फेनोमेना। जस्ट एज यू मूव फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, यू चेंज वन क्लॉक टू अनदर क्लॉक, एंड सोल पासेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टू गेन एक्सपीरियंसेस। ये बेसिक चीजें समझाना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आफ्टर डेथ जो हम रिचुअल्स करते हैं क्रिमेशन के बाद, उसकी क्या वैलिडिटी है, उसकी क्या यूज है या नहीं है। जब व्यक्ति मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार अपने नए जन्म को प्राप्त कर लिया, उसको जहां पैदा होना है हो गया, जिस तरह का कर्म फल भोगना है वो भोग रहा है, आप उसके लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए ध्यान दीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट आर यू डूइंग इन द नेम ऑफ हिम, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आप अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके प्रियजन जो चले गए, उनके नाम पर आप कुछ सोसाइटी में अच्छा काम करते हैं, इनकी मेमोरी में करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप कुछ इसी बहाने अच्छा काम करते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, किसी का भला करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर अगर आपका इंटेंशन है कि व्हाट एवर यू आर डूइंग जस्ट फॉर पीस ऑफ द सोल ऑफ योर डिपार्टेड, आपके पापा मम्मी अदर, तो यू आर इन द रॉन्ग पाथ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी शांति के लिए, और आपको एक एक्सक्यूज चाहिए इसी बहाने आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स ओके। आप अपने पिता से प्यार करते हैं, माता से प्यार करते हैं, ग्रैंड पेरेंट से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, आप अपने लिए उनकी मेमोरी को सजा के रखना चाहते हैं, बट डूइंग दैट्स ओके। सवाल ये नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ना इसमें कोई डाउट है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ही आदमी बड़ा सेल्फिश है, बहुत मुश्किल से दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करता है, करता भी है, पता नहीं दिमाग में बहुत सारे बातें सोच के करता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कर भी दिया सामने वाला ठीक से थैंक्स नहीं कहा तो भी बेचैनी होती है। वैसे ही बड़ी परेशानी है आदमी दूसरों को हेल्प करे तो, कम से कम इसी बहाने अपने मरे हुए माता पिता के बहाने, ग्रैंड पेरेंट्स के बहाने कुछ अगर अच्छा काम करता है, पूजा पाठ से वैसे ही दूर भागते हैं, चलो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने का मौका मिल गया इसी बहाने, कोई बात नहीं। किसी अनाथालय को, किसी ऑर्फनेज में आपने हेल्प किया पापा अपने पिता माता के नाम पर, कोई नया स्कूल खोला, कोई हॉस्पिटल खोला, किसी हॉस्पिटल में किसी बीमार को हेल्प किया, कोई और तरह के आपने चैरिटी की अपने पिता या माता के मेमोरी में, कोई स्कूल खोला, कुछ भी किया, ये अच्छा है, क्योंकि वैसे ही आप नहीं करते हो, कुछ तो करते हो आप। प्रॉब्लम हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, वो तो आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो जरूर करो, कम से कम इसी बहाने मां बाप के नाम पर तो कुछ आप अच्छा काम कर जाओगे। प्रॉब्लम है कि हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो जो लोग चले गए हैं उनको शांति देने के लिए, स्वर्ग पहुंचाने के लिए जो कुछ आप एक्टिविटीज करते हो वो कितना वैलिड है। पितर किसको कहते हैं? श्राद्ध और तर्पण की जब हम चर्चा करते हैं उसमें एक शब्द आता है पितर। पितरों की शांति के लिए कि भाई हम श्राद्ध करें, वो ले जाते हैं क्रिमेशन के बाद वो जो हड्डी वगैरह ले जाते हैं, फिर गया में, हरिद्वार में, पता नहीं कहाँ लेकर जाते हैं, नदियों में बहाते हैं। वहां बहुत ही बदतमीज, अनपढ़ और जालिम ब्राह्मणों से सारा काम करवाते हैं और बड़े खुश और प्रसन्न और संतुष्ट होकर आते हैं, मैंने अपने पिता को स्वर्ग पहुंचा दिया या माता को स्वर्ग पहुंचा दिया। जो गए होंगे गया में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में पिंडदान वगैरह कराने के लिए, देखे होंगे वो ब्राह्मणों को, उनकी सकल सूरत से लेकर के उनके मन और बुद्धि तक कितना भ्रष्ट है, किससे वो लूटते हैं। आपके कपड़े देखकर वो आंक लेंगे कि ये कितने का माल है ये, और हम खुश हैं, लुटवा कर खुश हैं, पिता को स्वर्ग पहुंचाए, माता को स्वर्ग पहुंचाकर आ गए, खुश है। क्यों खुश है? ये संस्कार है, बचपन से यही दिमाग में डाला गया है कि यू हैव टू डू इट। मंदिर में पंडा लूट लेता है, गालियां देता है, तो भी हम खुश है, भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे ही लोगों को ऐसे ही दर्शन होता है, पंडा की गाली प्रसाद होता है, सामने रखा हुआ पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा हुआ उनके लिए भगवान का दर्शन होता है, उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब लाइफ आपका सुधरा हुआ ना हो। अगर आपका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके मन में खोट है, मन बुद्धि शरीर में कोई शुद्धता नहीं है, कोई प्यूरिटी नहीं है, तो ऐसे ही भगवान मिलेंगे, ऐसे ही प्रसाद मिलेगा। पितर का मतलब होता है आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो भी जिन पेरेंट्स ऑफ लॉ है, जो कुछ भी है। पहले समझे कि ये श्राद्ध क्या चीज है। श्राद्ध शब्द जिस शब्द से बना, श्रद्धा तो आप जानते हैं, वैसे श्रद्धा से आप फट से अंग्रेजी में बोल देंगे फेथ, बिलीफ नहीं। श्रद्धा का दो जो संस्कृत वर्ड है इसमें दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, श्रत प्लस था। श्रत का मतलब होता है सच, रियलिटी, ट्रूथ, अधा मतलब टू होल्ड, धारण करना। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को, सच्चाई को धारण करना, एक्सेप्ट करना, टू होल्ड द ट्रूथ इन योर माइंड। सत्य को क्या धारण करना? ये एक्सेप्ट करना है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। जब बच्चे पूछते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, वो तो उनकी ड्यूटी थी करने की, पैदा क्यों कर रहे थे, किसने कहा था हमें पालने के लिए, तो इसका मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, तभी उनके अंदर इतने डाउट्स है। वो जो कुछ भी करेंगे गलती करेंगे, पर कोई व्यक्ति अगर ये मानता है मेरी मां बाप ने मेरे लिए कुछ किया है, सैक्रिफाइस किया है, अपनी जवानी को बर्बाद किया है, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया है, अगर वो ऐसा समझता है, ऐसा मानता है, दैट इज श्रद्धा। और उस श्रद्धा से वो जो कुछ करेगा, उस सत्य को एक्सेप्ट करने के बाद जो कुछ भी नेचुरल रिएक्शन होगा, ऑल दैट इज श्रद्ध। वो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? जब आप ये मानते हो, मतलब किसी के कहने पर नहीं, अंदर से आप मानते हो कि मेरे मां बाप की क्या मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, फिर आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा दूसरों से। आप झुके हुए चलोगे मां बाप के सामने, आप उनकी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखोगे, उनकी सुख दुख में साथी बनोगे, उनके बुढ़ापा के सहारा बनोगे, बिना किसी के कहने पर, बिना किसी किताब से पढ़ने पढ़ करके, बिना किसी सत्संग में सुनकर, बिना कोई शास्त्र पढ़ के आप करोगे, क्योंकि ये आपका कन्विक्शन है कि मेरे लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और आप ग्रेटफुल हो तो आप जो कुछ करोगे मां बाप के लिए, जो सेवा, जो आदर, जो सम्मान, वो सब श्राद्ध है। अगर कोई मानता है कि ये देश ने मेरे लिए क्या किया है, बहुत सारे लोग मानते हैं, क्या किया देश, क्या होता है, कोई मतलब होता है देश का, जो कुछ हुआ मैंने किया, मेरे मां बाप ने किया, देश के क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उनके एटीट्यूड अलग होगा, उनकी पैट्रियोटिज्म अलग टाइप का होगा, पर अगर कोई किसी का कन्विक्शन है मैं जो कुछ हूं उसमें इस देश का बड़ा रोल है, इसकी सोसाइटी, देश का मतलब कोई जमीन और पहाड़ तो नहीं होते, इसकी सोसाइटी, इसका कल्चर, इसका रूल, इसकी गवर्नेंस, इसकी कम्युनिटी, इस देश की जो कम्युनल सोच, जो एक कलेक्टिव सोच, वो नहीं होता शायद, मैं ऐसा नहीं होता। अगर ये आपकी कन्विक्शन हुआ, दैट इज श्रद्धा, मैं उस सत्य को मानता हूं कि मेरे लाइफ में मेरे देश का क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर आप जो कुछ करेंगे वो देश के लिए, वो श्राद्ध है। आप उसकी दूसरी भाषा में कहें ये देशभक्ति है, देश के लिए जो कुछ करेंगे वो देशभक्ति, पिता माता के लिए जो कुछ करेंगे वो पितृभक्ति, भक्ति शब्द अपने आप जुड़ जाती है, फिर कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। जो देशभक्त हैं वो किताब पढ़ के नहीं है, जो नहीं है वो भी किताब पढ़ के नहीं है, जो मां बाप को रेस्पेक्ट करते हैं वो किताब पढ़ के नहीं करते, जो नहीं करते वो भी पढ़ के नहीं करते। ये आपका हमारा कन्विक्शन है, ये श्रद्धा है, मैं उस सच को मानता हूं या नहीं मानता हूं। जब आप मानते हो तो आपके एटीट्यूड अलग होगा, जब आप नहीं मानते हो आपकी दूसरी एटीट्यूड होगा। श्रद्धा से किया गया काम श्राद्ध होता है। जीते जी तो मेरी शादी हुई, शादी जब तक नहीं हुई तब तक तो मेरी मां, मेरे पापा, शादी के बाद अगर पापा के बारे में तो याद कम रहता है, मम्मा के बारे में याद क्या रहता है, अच्छा खाना बनाती थी, लड्डू बढ़िया बनाती थी, सब्जी बढ़िया बनाती थी। मरने के बाद भी इयोलॉजी में सुनेंगे मेरी मां क्या क्या मेरे लिए बना करती थी, दैट्स इट, यही है स्मृति, मेमोरी। जीते जी मां बाप के लिए जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होता है, बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट जैसे एक छोटे बच्चे का होता है, ये भी भगवान की विचित्र व्यवस्था है। जैसे छोटा बच्चा आपका होता है वो ठीक से चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, हर चीज में पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, हर चीज में। और जवानी में हम अकड़ते हैं कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और फिर अगेन पुनर्मुशी को भवा हम भी फिर उसी स्टेज में आ जाते हैं हमारी बुढ़ापा में, बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, बूढ़े लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं, छोटी छोटी चीजों की डिमांड करते हैं, उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। बच्चों की एक चीज बड़ी जबरदस्त है, उनको अटेंशन 24 घंटे चाहिए, ना करो शरारत करते हैं। आप यकीन मानिए बूढ़े लोगों को भी अटेंशन की उतनी ही इच्छा होती है जितने बच्चों की होती है, पर फर्क है कि वो बहुत मैच्योर्ड हैं, वो दुनिया को समझते हैं, वो बच्चों की तरह जिद्दी नहीं कर पाते, डिमांड नहीं कर पाते। उनकी भी उतनी ही इच्छा होती है, खाना दो ना दो, मुझे भी हमें भी थोड़ा अटेंड करो, अटेंशन दो। ये नहीं कि हम दो हमारे दो बस दुनिया इसी में समेट गया, पति पत्नी हमारे दो बच्चे। ज्यादातर बच्चे खुश हो जाते हैं, चलो हम अपने मां बाप को खाना खिला देते हैं, जो पैसा चाहिए दे देते हैं। बुढ़ापा में उनकी जो सराउंडिंग है कम होती है, खास करके जब वो डिसेबल हो जाते हैं, ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, वो भी सोचते हैं कोई हमारे पास बैठे, बातें करें, अपनी घर की बातें शेयर करें, नौकरी की बात करें, जो भी आप करते हैं वो सब हमारे साथ ऐसे ही शेयर करें जैसे आप अपने आपस में करते हो, बच्चों के जो भी जिसके साथ भी करते हो, हमें भी अटेंशन दो। पैसे से ज्यादा उनको अटेंशन की जरूरत होती है, उस प्यार के एहसास की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी शादी हो गई, मैं अपनी पत्नी या पति के साथ अपने बच्चों के साम्राज्य में खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी मां बाथरूम में कितने बार गिरती है, मेरे पिता कितने बार खाते समय खांसते हैं मुझे याद करते हुए, और मरने के बाद मैं बड़ा आडंबर करता हूं, हजारों लोगों को बुलाता हूं, और मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, भारत में एक आम आदमी की लाइफ में दो चीजें बहुत खर्चीले होते हैं, जमीन जायदाद बिक जाता है, एक होता है बेटी की शादी और मां बाप की जो अंत्येष्टि क्रिया, जो शहरों में होता है उनको कम फर्क पड़ता है, गांव में देखेंगे 3-4 दिन तक तो सैकड़ों लोगों को खिलानी पड़ती है, हजारों ब्राह्मणों को खिलाना पड़ता है, 50 पकवान बनाना पड़ते हैं, फिर मोटे दक्षिणा देनी पड़ती है, दक्षिणा में गाय से सोने से सोना भी देना होता है, गाय भी देनी होती है, और पता नहीं बिस्तर से लेकर बर्तन तक गरीब लोग जमीन जायदाद बेच लेते हैं, आज भी बेचते हैं मां बाप की श्राद्ध के लिए, अंत्येष्टि कर्म पूरा करने के लिए। और एक बेटी की शादी में, क्योंकि मोटी दहेज ये पुरुष के नाम पर जो भेड़िया लोग भारत में बहुत ज्यादा है, जो जिससे शादी करेंगे उसे दहेज के नाम पर डिमांड करते हैं, मां बाप कंगाल हो जाते हैं। आप कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उस सोसाइटी के पार्ट हैं, अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आप इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो आप प्रमोट करते हैं और लाखों करोड़ों के लाइफ को आप अनजाने में डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके भी कंट्रीब्यूशन होता है। जब इन चीजों को आप बढ़ावा देते हैं साइलेंटली, या आप उसको प्रमोट करते हैं कि ये होना चाहिए इन द नेम ऑफ कल्चर, मां बाप को जीते जी सेवा करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनका ख्याल रखना, उनको अपनी फैमिली का मेंबर समझना, ये उनके प्रति श्राद्ध है। तर्पण का मतलब समझते हैं, तर्पण तो आप गया में करते हैं, हरिद्वार में, मथुरा में करते होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं करते हैं यहां, मैं तो आपको एड्रेस नहीं कर रहा, ओवरऑल जो कम्युनिटी को बात कर रहा हूं। तो वो नदी में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, किसको, पितरों को, कि उनका तर्पण, तर्पण का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट कराना, तृप्ति, खाने के बाद आप तृप्त होते हैं ना, कंटेंटमेंट। जीते जी जिंदा आदमी को तर्पण की जरूरत पड़ती है, अच्छा खाना मिला बहुत दिनों के बाद थोड़ा तृप्ति मिली। आज बेटे बहू बेटी दामाद सब आज मेरे पास बैठे, 1 घंटे बातचीत किया मेरे साथ, खेला कूदा जो भी किया, बड़ी तुष्टि हुई, संतुष्टि हुई। दैट इज तर्पण, वो तो हमने किया नहीं। मरने के बाद पिता माता के नाम पर ब्राह्मणों की तृप्ति कराई, बोला जी मैंने पिता की तर्पण करा, तर्पण तो तुमने पंडित का किया, पिता का कब किया, माता का कब किया, श्राद्ध तो पंडित का कर रहे हो, जिसको खिला रहे हो मां बाप के नाम पर, जिसको दे रहे हो मां बाप के नाम पर, पिता माता का क्या करते हो, करना होता तो जीते जी करते। देवियों सज्जनों, ये बहुत जरूरी है, जब आप सिविलाइज होते हैं तो यू हैव टू बिहेव लाइक ए सिविलाइज पर्सन। हमारी पिछली पीढ़ी को, हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को श्राद्ध और तर्पण की जरूरत है, जीते जी जिंदा। मरने के बाद आप जो कुछ करते हैं अपनी इग्नोरेंस को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, इग्नोरेंस को क्योंकि आपको पता नहीं है, आपकी कल्चर में, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज में चलता रहता है, पंडित लोग बोलते रहते हैं, आप करते हो शायद मेरे पिता को माता को कहीं शांति मिल जाएगी ये सब करने से, या आपकी ईगो को आप इसको बड़े आडंबर रूप में करते हो, ग्लोरीफाई करके करते हो, जस्ट शो अप कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत दान कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। आप दान कर सकते हैं तो जरूर करिए, उसी ब्राह्मण को करिए जिसको आप श्राद्ध के नाम पर देते हो, कोई मना नहीं है, वो भी कोई गरीब तो होते हैं, कौन से धनी लोग होते हैं, पर इस नाम से मत करिए कि तुम्हें देने से मेरे पिता और माता की आत्मा को शांति मिलती है, ये नाम से मत करिए। आप करप्शन को बढ़ावा देते हैं, अब वैसे ही चले जाइए कि मेरे पास, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, लो जी जो भी आपको, कपड़े लो, बिस्तर लो, बर्तन लो, घर लो, गाय लो, जो हेल्प करना है करिए, वो खुश होगा, वही पंडित भी खुश होगा और वो जो आशीर्वाद देगा वो दिल से देगा। पर जब इस तरह करते हैं वो क्रूकेड होता है, वो बड़ी छली और कपटी बन जाता है, वो पैसा चूसने की आदत बन जाती है, वो लूटने की कोशिश, वही आदमी श्राद्ध और तर्पण के नाम पर हम उस ब्राह्मण को भी करप्ट बनाते हैं। माता पिता का कुछ नहीं होने वाला, ना आप उसको करप्ट बनाते हैं, ना उनको कुछ शांति या अशांति कराते हैं, कुछ नहीं, वो तो जो जन्म लेना है ले चुका है जी, वो मेरे और आपके कर्मों से किसी का दूसरे का कर्म बदलता ना बदलता है ना नहीं बदलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे सिंगल है, इंडिविजुअल है, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना कोई बच्चे, ना कोई मां, ना बाप, कोई किसी का नहीं, सब हिसाब किताब आपसे डायरेक्ट होता है इंडिविजुअली। तुम कौन हो, क्या करके आए हो, बीवी के कहने पर किया, मियां के पति के कहने पर किया, बच्चों के कहने पर किया, कोई केयर नहीं करेगा, किसके लिए किया, नो वन केयर, हिसाब किताब तुम्हारी होगी ईश्वर के साथ, तुमने क्या किया तुम्हें क्या मिलेगा, किसी की काउंटिंग नहीं होगी। स्टोरी सुनी होगी वाल्मीकि की, रत्नाकर दस्यु की, मैं स्टोरी अभी नहीं सुनाऊंगा, पहले सुनाया होगा, अभी समय नहीं है। इसीलिए किसी के करने पर किसी को कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा मानते हो तो आप दो डॉक्ट्रिन को नहीं मानते हो, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। इसीलिए हमारे यहां जो पांच महायज्ञों की व्यवस्था की गई हमारे धर्मशास्त्रों में, कि हर इंडिविजुअल अपने लाइफ में पांच जरूरी चीजें जरूर करे, डेली करे, और उसका नाम दिया महायज्ञ। ये जो यज्ञ करते हैं ये तो यज्ञ है, उसको कहा ये महायज्ञ है। वो कौन पांच चीजें हैं, उनमें से एक है पितृ यज्ञ, मां बाप को रेस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना, और उनके साथ टाइम बिताना, ये तीन चीजें यज्ञों का मूल, किसी भी यज्ञ का जो फाउंडेशन है वो तीन चीज पर बेस्ड होता है। वी कॉल्ड इट यज्ञ दाने देव पूजायाम संगति करणे, दान टू गिव, देव पूजा रेस्पेक्टिंग एडोरिंग वर्शिपिंग, संगति करना यूनाइटिंग, बैठना मिलना। पांच महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर को मानो, ईश्वर के लिए कुछ ऑफर करो, लड्डू और फूल या केला या एप्पल नहीं, वो तो तुम्हारे लिए है, तुम खाओ खुश रहो, ईश्वर को इसकी जरूरत नहीं है। अपनी ईगो को अहंकार को सेक्रीफाइस करो, बी हम्बल पोलाइट ईगोलेस, उसको सम्मान करो, ऑफर करो और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो, दैट इज कॉल्ड उपासना। ये पहला यज्ञ है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म यज्ञ, जो आपको डेली करने की है। और उस ब्रह्म यज्ञ की दूसरी पार्ट थी स्वाध्याय करो, रोज पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, वो किताबें जिससे पैसा कमाओगे वो नहीं, वो तो तुम स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, अपने समर ब्रेक में पढ़ते हो, वो चीजें जो तुम्हारे लाइफ के लिए जरूरी है, तुम कौन हो, कहां से आए, कहां जाओगे, कैसे हो, तुम खुद के बारे में जो जानने की कोशिश है, वो स्वाध्याय है ब्रह्म यज्ञ। अगला बोला नेचर की केयर करो, दैट इज देव यज्ञ। तीन चीजें लागू होनी चाहिए, नेचर के लिए कुछ ऑफर करो, जो तुम नेचर को इकोलॉजी को खराब करते हो अपने लाइफस्टाइल के लिए उसको ठीक करो, नेचर के साथ रहो और नेचर को रेस्पेक्ट करो। जिसको ना करने से रिजल्ट आज आप देख रहे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और पता नहीं दुनिया भर की बीमारियां। तीसरा बोला पितृ यज्ञ, माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स भी, जो भी पिता माता के लेवल के लोग हैं, उन सबको वही तीन चीजें करो, उनको ऑफर करो, उनको पैसा चाहिए, खाना पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, वो सब आप प्रोवाइड करोगे। देव पूजा, उनको रेस्पेक्ट दो, उनको फील कराओ कि वो कितने रेस्पेक्टेड हैं आपके लिए। और द लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इग्नोर करते हैं, संगतिकरण, उनके साथ टाइम बिताओ, बैठो, बातें करो, सुख दुख बांटो, खेलो, हंसी मजाक, जो भी जिस तरह के मां बाप को पसंद है। मैं पांचों महायज्ञों की चर्चा नहीं कर रहा, मैं पितृ यज्ञ को कोट किया। यज्ञ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि जहां तीन चीजें हो, जहां आप कुछ देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और मिलते हैं, जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पितृ यज्ञ। यही श्राद्ध है और तर्पण है। And it is therefore useless to offer पिंड। पिंड कहते हैं वो जो चावल की आटे की गोला बनाते हैं, फिर वो रखते हैं पांच छह पता नहीं कितने रखते हैं, कुश का घास रखते हैं, जो लोग रिचुअल कराते हैं उनको पता होगा क्यों करते हैं, कि उनको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो अशांत होंगे, उनको उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति अगर ये चावल के पिंड रखने से मिलता हो तो फिर तो ये कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म सब बेकार है, जितना पाप करना है करो, जो करना है करो, बस एक बेटा पैदा कर दो, बेटा भी चाहिए ना, श्राद्ध के लिए बेटियां भी नहीं कर सकती है, एक बेटा पैदा कर लो, नालायक हो कैसा भी हो, बस पिंड रख दे आपकी मुक्ति, फिर ना गीता पढ़ने की जरूरत है, ना उपनिषद पढ़ने की जरूरत है, ना ध्यान करने की जरूरत है, ना अपनी चरित्र सुधारने की जरूरत है, ना मन को प्यूरिफाई करने, कुछ नहीं, बस एक बेटा पैदा कर लो, दैट्स इट, पढ़ाओ लिखाओ, नालायक हो गधा हो कुछ भी हो, बस पिंड रख दे, ब्राह्मण को खिला दे, मुक्ति मिली। When a person is dead, if you put a lot of, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से जो ब्राह्मण लोग आपसे आर्ग्यू करेंगे कि देखिए ऐसा है कि वो आजकल तो हर रिलीजियस लीडर बड़ा साइंटिस्ट, मुझे लगता है साइंटिस्ट आजकल कम साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस जो प्रीचर होते हैं वो ज्यादा बड़े साइंटिस्ट होते हैं। हर चीज को कहेंगे इसका साइंटिफिक रीजन ये है, और वो ऐसी साइंटिफिक रीजन है कि आप दिमाग में ताला लगा दें तभी वो साइंस आता है। अगर आपका दिमाग खुला है वो साइंस आप समझ नहीं सकते हो। वो बहुत सुपर नेचुरल साइंस है जिसको समझने के लिए यू हैव टू लॉक योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स, द शेडो साइंस, द फेक साइंस। जी वो साइंस है, वो आत्मा ऐसी भटकती है, जवाब देते हैं वो या जाता है ये जाता है, बड़ा क्रिटिकल है, रॉकेट साइंस से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे तो कभी समझ में आया ही नहीं पंडित होकर भी। सिंपल सी लॉजिक है, अगर मेरे यहां पिंड चढ़ाने से मेरे मां बाप को, मरे हुए मां बाप को खाना मिल जाता है तो आपके बच्चे स्कूल में है, घर में रख दो, ऐसे बोलो कि ये बच्चों के लिए है, तो खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा तो जीते जी तो नहीं कर पाते हो, मरने के बाद कैसे हो जाता है भाई कि पिंड आप नदी के किनारे रखते हो चावल का गोला, और पिता स्वर्ग लोक में है, जमीन में है, आसमान में है, पेड़ में है, उनको मिल जाता है। ये कौन सा साइंस है? पंडित तो समझा सकते हैं, पर आप जो समझ जाते हैं मुझे आश्चर्य होता है, वो कैसे समझ जाते हैं? ज्यादा ही आपकी बुद्धि तेज होगी उन लोगों की जो इनको समझ जाते। इससे एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मैं कंक्लूड करता हूं। हमारे खास करके हिंदू लोगों में मरने के बाद बॉडी डोनेट करने का, ऑर्गन्स डोनेट करने की बहुत कम परसेंटेज मिलते हैं। उसका कारण है कि यही डर है, मैं अगर अपने पिता का, माता का या किसी का बॉडी डोनेट कर दिया तो ये तो स्वर्ग तो नहीं जा पाएंगे, मुक्ति तो मिलेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जो अंत्येष्टि क्रिया है, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंत, मतलब द एंड लास्ट, इष्टि मतलब यज्ञ, लास्ट यज्ञ ऑफ द लाइफ, एंड व्हाट इज दैट? द क्रिमेशन। क्रिमेशन इज द लास्ट यज्ञ वेयर इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग घी एंड वुड स्टिक्स सामग्री यू आर ऑफरिंग योर बॉडी, बॉडी इज द वुड स्टिक, उसके बाद आपका कोई रिलेशन नहीं है, खत्म। जो कुछ आप करेंगे अपनी शांति के लिए, करने की जरूरत है अपनी शांति के लिए। जो घरों में 12-13 दिन तक रहता है, बहुत सारे जगह 12 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, कहीं 4 दिन तक होता है, उसका दूसरा रीजन है, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में है, शोक में है, कोई उनका प्रियजन चला गया, उस शोक से निपटने के लिए आप अकेले, आपकी कोई व्यक्ति चला गया और आप घर में अकेले हो, बड़ा मुश्किल है। तो ये व्यवस्था की गई कि फैमिली लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, घर में आप हवन पूजा पाठ जो भी आप करते हो, बट ये सब करने में मना नहीं है, करने के पीछे इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि इससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जरूर सोल्यूशन मिलता है, आपको कंसोल होता है, आप अपने दुख को कम कर पाते हो, माहौल थोड़ा आध्यात्मिक होता है, घर वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इट हेल्प्स यू अ लॉट, इसीलिए जरूरी है। और सिंपल सी बात है, अगर आप ये पिंड दान वगैरह नहीं करोगे, श्राद्ध तर्पण नहीं करोगे, कोई हमारे माता पिता का असंतुष्ट भूत और प्रेत किसी को तंग करने नहीं आने वाला, यकीन मानिए। भूत और प्रेत उन्हीं को तंग करते हैं या उन्हीं के सामने आते हैं जिनको भूत प्रेत में बड़ी श्रद्धा है। कभी किसी एथिस्ट आदमी को भूत नहीं दिखेगा, यकीन मानिए। कभी किसी हिंदू को जीसस नहीं दिखेगा, किसी 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 भी क्रिश्चियन को कभी कृष्ण ड्रीम में नहीं दिखेगा। इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। आप जिस चीज को बहुत बहुत इंटेंस के साथ बिलीव करते हो, वो आप फिजिकली भी वो आपके सामने दिखेगा, खुले आंख में भी बंद आंख में भी। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसकी इलाज होता है। इट्स न डिवोशन, इसी भक्ति नहीं है। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, इट्स ए डिजीज, मेंटल डिजीज। दिव्यों सज्जनों, हमारे शास्त्रों में भूत का सिंपल मतलब है एनीवन हु इज बर्न। आप सब में सब भूत हैं देवी और सज्जनों, यकीन मानिए। आप गीता उठाओ, पुराण उठाओ, वेद उठाओ, उपनिषद उठाओ, भूत का मतलब यही है, आप और हम। जिंदा आदमी जो भी पैदा हुआ है वो सब भूत हैं, और जो मरा वो सब प्रेत हैं। जो चला, प्रेत का मतलब होता है एनीवन हु इज डेड, भूत मतलब एनीवन हु इज बर्न, दैट्स इट। ये भूत प्रेत हमारे कंसेप्ट का नहीं है, ये भी हमने इंपोर्ट किया है दूसरे रिलीजन से, अब्राहमिक रिलीजन से। देवियों सज्जनों, आप एक बहुत ही शानदार ग्लोरियस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, जिसका कल्चर, जिसकी फिलॉसफी, जिसका रिलीजन बहुत पावरफुल है, बहुत नॉलेजिबल है, बहुत फिलोसफिकल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है। बात है कि उनको समझने की, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग इलिटरेट पंडित, फॉलो योर इनर कॉन्शियस एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, आपको सोल्यूशन मिलेगा। लॉजिकल सोल्यूशन मिलेगा, रैशनल सोल्यूशन मिलेगा, फिलोसफिकल सोल्यूशन मिलेगा, एंड एक्चुअल रियल सोल्यूशन मिलेगा। श्राद्ध और तर्पण अपने जीते जी जिंदा मां बाप की करिए, उनको खुश रखिए, वो जरूर दिल से आशीर्वाद देंगे, आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।